देश में इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है। कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को केरल में 46,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। देश में रोजाना आने वाले संक्रमितों की संख्या भी अब 3 लाख को पार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी राजेश भूषण ताजा स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं,
भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो 2,71,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह, और पॉजिटिविटी लगभग 16% के बराबर है, और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं।
दिल्ली और मुंबई में नए मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन कई राज्यों में इसमें तेजी है। इस बार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि गंभीर रूप से बीमार और मौतों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम है। आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव इसका श्रेय टीकाकरण को देते हैं।
वैक्सीन्स हैव रिमेन्ड बेनिफिशियल इन इंडिया। द करंट सर्ज इन इंडिया इज नॉट, एंड एम्फसाइज, इज नॉट विटनेसिंग एन इंक्रीज इन सीवियर इलनेस एंड डेथ्स फॉलोइंग हाई वैक्सीनेशन अपटेक। बिकॉज ऑफ हाई वैक्सीनेशन अपटेक we are not witnessing that much severe disease and death. However, we have to remember one point. Those with comorbidities should monitor their health and avoid complications.
वयस्क आबादी के 72% लोगों ने टीके के दोनों डोज लगवा लिए हैं, वहीं 94% लोगों ने कम से कम एक टीका लगवा लिया है। अब किशोरों में टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। राजेश भूषण इस बारे में बताते हैं,
हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने को वैक्सीनेट करने में दिखाई है। देश में 52% यंग एडल्ट्स को हमने वैक्सीनेट किया है पहली डोज से।
कोरोना के चलते देश के शिक्षा संस्थानों में सूनापन पसरा हुआ है। वैसे कई राज्य स्कूलों को नियमित रूप से शुरू करने की कवायद भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगले सप्ताह से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बारे में जानकारी दी।
मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं, पहली से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
सरकार कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्कूल खोलने जा रही है जहां संक्रमण की दर काफी कम है। और अब बात गोवा विधानसभा चुनाव की। सत्तारूढ़ भाजपा ने यहां अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी एनसीपी और शिवसेना ने यहां गठबंधन नहीं हो पाने का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा है। एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना नेता संजय राउत कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं,
उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। जितने हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है।
कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी हमलावर है। सबसे ज्यादा हमला भाजपा की ओर से हो रहा है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस गोवा की छवि खराब करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर मढ़ते हुए कहते हैं,
कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था।
राज्य में कभी मजबूत स्थिति में रहने वाली कांग्रेस पार्टी अभी चौतरफा दबाव झेल रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और चलते चलते बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां कथित तौर पर एक किशोर का अपहरण चीनी सेना ने किया है। यह आरोप भाजपा के स्थानीय सांसद तापिर गांव ने लगाया है। सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी भी दी है, साथ ही किशोर की शीघ्र रिहाई की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। चीन की करतूतों पर चुप्पी साधने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं,
सीनियर सांसद वो कहते हैं कि अरुणाचल में हमारी सीमा के अंदर से एक 17 साल के लड़के को उठा के चाइना लेके गया है। उसके साथ उनका दोस्त था, वो किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग के निकल गया है। यह भी कहा गया है कि 2018 में 3 से 4 किलोमीटर रोड हमारी टेरिटरी में चाइना ने बना दिया है। ये कहने वाला कोई और नहीं है, मोदी जी, ये भाजपा का सांसद है। मोदी जी, ये अरुणाचल प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष है। मैं मोदी जी से मांग करता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, शायद आपका एमपी भी झूठ बोल सकता है कि आप चुप्पी साधे बैठे हुए हो, कि राष्ट्र के हित का सवाल है, पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि मोदी जी चुप्पी तोड़े।
इस मामले पर भारत सरकार ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं है। इस बीच भारतीय सेना लापता हुए किशोर को तलाशने में जुट गई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।